बाबा की चेतन ने बगिया के चेतन ने फूल है। हम सभी ने उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा को जन्म जन्मांतर से अनेक रूपों में पुकारते रहे, उसकी प्राप्ति के लिए बहुत कुछ किया, आह्वान किया, अनेक प्रकार के व्रत उपास किए और भगवान से बार बार यही कहते आए कि भगवान आप मेरी बिगड़ी को बना दो, कैसे भी करके मेरी बिगड़ी को बनाओ, हे पालनहार इस संसार में आकर मेरी पालना करो। भगवान ने बाबा ने हम बच्चों की पुकार को सुना और सुनकर के इस सुहाने संगम युग पर इस सृष्टि पर बाबा अवतरित हुए सिर्फ किसके लिए, मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम बच्चों ने ही उसको सबसे ज्यादा पुकारा और हर पुकार के अंदर एक ही फरियाद कि बाबा इस दुख की दुनिया से मुक्त करो, मुझ आत्मा को संपूर्ण सुख शांति आनंद का अनुभव कराओ। प्यारे बाबा ने हम बच्चों की पुकार को सुना और सुनकर के हमारे आगे प्रत्यक्ष हुए, जिसको संसार ढूंढ रहा है, जिसको संसार खोज रहा है, वो स्वयं हमारे सामने आकर के हमारी पालना कर रहा है। हम कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं, कितनी सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, हम अपनी भी जितनी महिमा करें उतनी महिमा कम है। और बाबा की, जो हमारा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, जो बाबा ने अभी भी जो मुरली चलाई उसके अंदर कहा कि मैं तुमको गोल्डन गिफ्ट देता हूं, सिर्फ बाबा। बाबा ने ऐसा प्यारा बाबा शब्द, और बाबा शब्द के अंदर सारे रस भर दिए। उस बाबा ने हम आत्माओं की जन्म जन्मांतर की बिगड़ी को बनाने के लिए एक अनोखे विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। और अनोखे इस विश्वविद्यालय के अंदर आत्मा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आत्मा अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए, संगम युग की डिग्री को प्राप्त कर ले, इसके लिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट दिए। सहज ज्ञान, सहज योग, सहज धारणाएं दिव्य गुणों की और साथ साथ स्वयं और विश्व की सेवा, जिसके द्वारा हम अपने को भी बाप के समान बनाए और अनेक आत्माओं को भी बाप के समान बनाए। इसके लिए प्यारे बाबा ने हम आत्माओं को लक्ष्य दिया कि बच्चे तुम्हें नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो लक्ष्य के साथ साथ लक्ष्य का जो आधार होता है वो पढ़ाई पर होता है, और पढ़ाई का जो आधार होता है वो लक्ष्य पर होता है। बाबा ने हम आत्माएं संपन्न बन जाएं, हम आत्माएं लक्ष्य पर पहुंच जाएं, इसके लिए बाबा ने ये जो 4 सब्जेक्ट दिए, तो पहले इन 4 सब्जेक्ट के द्वारा हमको ये स्पष्ट किया कि बच्चे आप लक्ष्य पर कैसे पहुंच सकते हो और पहुंचने की पहली सीढ़ी क्या है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है तो पढ़ाई के अंदर पेपर ना हो, एग्जाम ना हो, परीक्षाएं ना हो, तो वो लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। सर्टिफिकेट लेने के लिए एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। शिव बाबा को हम बच्चों ने बुलाया ही उस दुनिया में, जिस दुनिया के अंदर चाहे तो प्रकृति के 5 तत्व तमो प्रधान हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई, संबंधों में भी तमो प्रधानता आ गई, अर्थात चारों तरफ दुख, अशांति, कलह और विपरीत परिस्थितियां। ऐसे ही समय में भगवान को हम आत्माओं ने पुकारा और ऐसे समय में ही भगवान इस सृष्टि पर आए। तो अभी हम ये तो कह ही नहीं सकते कि परिस्थितियां हमारे सामने ना आए, क्योंकि बाबा ने हर मुरली के अंदर समय प्रति समय यह भी हमारे सामने स्पष्ट करते रहे हैं कि बच्चे पेपर तो होंगे, विपरीत परिस्थितियां तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, क्यों? क्योंकि ऐसे समय में ही हमने बाबा को बुलाया है। जब हम सुखमय होंगे, स्थिति और परिस्थिति दोनों हमारे समान होगी, सुखमय होगी, तब तो हमने बाबा को पुकारा ही नहीं। कहावत भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सतयुग में और त्रेता युग में तो बाबा को ना तो हमने पुकारा और ना ही बाबा आएगा। हमने बाबा को कब पुकारा? जब हम आत्मा दुखी और अशांत हो गए। और दुखी और अशांत कब हुई? जब प्रकृति के पांच तत्व हमारे विपरीत हो गए, परिस्थितियां विपरीत हो गई, तब हमने उस भगवान को पुकारा और उस भगवान ने हमारी पुकार को सुना। तो अब प्रश्न आता है कि जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति, गायन भी है ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में हमारी स्थिति श्रेष्ठ थी तो परिस्थितियां भी कैसी थी? श्रेष्ठ थी। प्रकृति हमारी दासी थी, कर्म इंद्रियां भी हमारे अधीन थी, प्रकृति के पांच तत्व भी हमारे इशारे से चलते थे। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्थिति थी वो श्रेष्ठ और सत्व प्रधान थी। आज हमारी स्थिति तमो प्रधान हो गई, तो प्रकृति भी कैसी बन गई? तमो प्रधान। स्थिति भी कैसी बन गई? तमो प्रधान। अभी बाबा किस लिए आए? बाबा को हमने किस लिए पुकारा? क्योंकि भक्ति में भी जैसे हम थे वैसे अपने आप का वर्णन करते रहे। भक्त भगवान के आगे गए, उन्होंने कहा कि मैं नीच हूँ, खल हूँ, कामी हूँ और पापी हूँ। तो जैसे थे वैसा वर्णन किया और वैसे बने। बाबा ने हम बच्चों की स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमको लक्ष्य दिया और लक्ष्य के साथ साथ वर्तमान में स्वयमान दिए और स्वयमान के साथ में हमको हमारी आत्मा की जो स्थिति श्रेष्ठ थी तो पहले दिन ही क्या पाठ पढ़ाया कि तुम आत्मा कैसी आत्मा हो? पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो। तो बाबा ने पहले दिन श्रेष्ठता का, पवित्रता का हम बच्चों को स्वयमान भी दिया और पहला संकल्प भी दिया। तो पहला जो संकल्प श्रेष्ठ आत्मा का दिया, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो कमजोर संकल्प थे कि मैं आत्मा कमजोर हूं, मैं आत्मा चरणों की धूल हूं, मैं आत्मा दास हूं, जब बाबा के नहीं बने थे तो हमारा सोच और हमारा चिंतन यही था ना, किसी भी थोड़ा सा श्रेष्ठ आत्मा के पास पहुंचे, कोई विशेष आत्मा के पास पहुंचे, तो हमारे अंदर सबसे पहला संकल्प और मुख में वाणी में क्या आता था कि आप तो महान हो, हम तो आपकी चरणों की धूल हैं। लेकिन यहाँ पे बाबा ने हमको सबसे पहला स्वयमान क्या दिया कि आप श्रेष्ठ आत्मा हो। ये स्वयमान क्यों दिया? क्योंकि बाबा ने हमको ये रियलाइज कराया कि बच्चे आप किसकी संतान हो, आपका पिता कौन है, आपका बीज क्या है। हमको ये अनुभूति कराई कि तुम आत्मा, किसी साधारण मनुष्य आत्मा की संतान नहीं हो, तुम आत्मा कौन हो? मेरे बच्चे हो। सर्वशक्तिवान अलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो। जैसा बीज वैसा वृक्ष। तो हमारी जो फाउंडेशन है, हमारी फाउंडेशन के अंदर कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है, साधारण आत्मा नहीं है। अगर हम अपने आदि स्वरूप को भी याद करें तो भी बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम देव आत्माओं की संतान थे, तुम सब देव आत्मा थे, तुम सब पूज्य थे। तो बाबा ने ये सब हमको स्मृति क्यों दिलाई? क्योंकि हम आत्मा श्रेष्ठ स्मृति के आधार से समर्थी स्वरूप बन जाएं। जैसी स्मृति वैसी समर्थ। मुझ आत्मा की स्मृति अगर कमजोर होगी तो मुझ आत्मा का कर्म और बोल भी कमजोर होगा। मुझ आत्मा की स्मृति अगर श्रेष्ठ और पावरफुल होगी तो मुझ आत्मा के बोल में, कर्म में पावर होगी। इसलिए बाबा ने सबसे पहले आत्मा और आत्मा के परिचय के अंदर स्वदेश और स्वधर्म का ज्ञान दिया कि आपका धर्म क्या है, आपका स्वदेश क्या है, किस देश से आए हो और किस लिए आए हो। तो जब हम इसकी स्मृति में आते हैं तो ये स्मृति हम आत्मा के अंदर पावर भर देती है। और जब हमारे अंदर में पावर आ जाती है तो हम हैं ही कौन? गॉडली स्टूडेंट। हम साधारण आत्मा नहीं है, हम साधारण भगवान के बच्चे नहीं हैं। भगवान ने हम बच्चों को इस संगम युग पर गॉडली स्टूडेंट बनाया है। और गॉडली स्टूडेंट के लिए क्या कहा गया है? स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ। सबसे अच्छा जो जीवन होता है वो किसका होता है? स्टूडेंट का, विद्यार्थी का। विद्यार्थी का जीवन अच्छा क्यों होता है? उसके सामने दो बातें होती हैं, लक्ष्य और स्टडी। सिर्फ उसको पढ़ाई करनी होती है और पढ़ाई में उसे क्या पढ़ना होता है? जो उसका लक्ष्य है। और उन दोनों के बीच में उसके समय प्रति समय उसके टेस्ट होते रहते हैं, उसके पेपर होते रहते हैं और लास्ट में उसके फाइनल पेपर होते हैं। लेकिन फाइनल पेपर से पहले उसके टेस्ट पेपर भी चलते हैं। टेस्ट पेपर किस लिए होते हैं? हम अपने आप से भी पूछें कि कोई विद्यार्थी जब स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करने वाले के सामने अगर टेस्ट ना हो, पेपर ना हो, तो उसको पढ़ाई में आनंद आएगा? वो किसी से कंपटीशन कर पाएगा? उसको कभी भी अपनी उस पढ़ाई पर नशा आएगा, उमंग आएगा, उत्साह आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके जीवन का एक रूटीन बन जाएगा कि उसको पढ़ाई करनी है, फिर अपने दैनिक कार्य करने हैं, फिर पढ़ाई करनी है, फिर दैनिक कार्य करने हैं। तो उसको ये ही नहीं पता लगेगा कि पढ़ाई के आधार से मैंने क्या पाया, मैंने क्या सीखा, मेरा प्रैक्टिकल जीवन कैसा बना, इसका तराजू क्या है। इसकी जो तराजू है वो है टेस्ट। स्कूल में भी टेस्ट होते रहते हैं ना बच्चों के, तो टेस्ट किस लिए होते हैं? कि उस बच्चे ने इस वीक के अंदर में कितना पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ में कितना उसको याद है। फिर मासिक टेस्ट भी होते हैं, फिर 3 मास के बाद भी होते हैं, फिर फाइनल भी होते हैं। और शुरू शुरू में जो उसके टेस्ट होते हैं छोटे छोटे, अब उसके अंदर अगर कमजोर विद्यार्थी है तो उसको तो टेस्ट से क्या होगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगा। टेंशन क्या क्रिएट हो जाएगा कि इतनी पढ़ाई भी करने की मेहनत करो, अब ये टीचर ने क्या किया है, टेस्ट और रख दिया, तो अभी टेस्ट दें या हम अपनी पढ़ाई करें। तो उसको पढ़ाई में टेस्ट क्या है, उसका सहयोगी, लेकिन उस सहयोगी बात को वो क्या समझेगा, उस टेस्ट को वो क्या समझेगा, अपने लिए एक विपरीत परिस्थिति समझेगा। लेकिन जो होशियार विद्यार्थी होगा वो क्या करेगा, उसको पता लगेगी फलानी डेट में हमारा टेस्ट होना है, या फलानी डेट में हमारी परीक्षा होनी है, फलानी डेट में फाइनल परीक्षा होनी है। तो उस विद्यार्थी को टेंशन होगा या खुशी होगी, क्या होगा दोनों में से? खुशी होगी ना। उसको खुशी क्यों होगी, वो कहेगा चलो इतने समय से हम पढ़ाई कर रहे थे, अभी हमको ये तो पता चले कि रियल में हमने कितना पढ़ा है, कितना अभी हमने अपने अंदर में सीख लिया है, और इतने सारे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें मेरा नंबर कौन सा है। अगर टेस्ट ना हो तो उसको अपने नंबर का भी पता नहीं चलेगा, और नंबर का पता ना चलने के कारण से हो सकता है कि वो पढ़ाई के अंदर अलवेला होकर चलता रहे, वो अपने आप को चेक ही नहीं कर पाए कि इतने दिन की पढ़ाई में मैं कहां पर हूं। ठीक इसी प्रकार से शिव बाबा ने हम बच्चों के लिए ये अनोखा विद्यालय खोला है और अनोखा लक्ष्य दिया है। संसार में तो किसी ने ये लक्ष्य नहीं दिया कि तुम्हें नर से नारायण बनना है। लक्ष्य देना तो बहुत बड़ी बात है, सोचा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, लेकिन यहाँ तो बाबा रोज हमको स्मृति दिलाते हैं और साथ में कहते हैं इस स्मृति के लिए हर एक अपने घर के अंदर भी ये चित्र टांग करके रखो कि मुझे ऐसा बनना है। तो बाबा ने इतना बड़ा ये जो अनोखा विश्वविद्यालय खोला है और इसकी हमको डेली पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। संसार में कितने भी अच्छे स्कूल हों, कितने भी अच्छे कॉलेज हों, लेकिन क्या होता है, समय और परिस्थिति के आधार से उनमें चेंजिंग आ जाती है। कभी क्लास टीचर लेट हो जाएगा, कभी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन शिव बाबा ने हम बच्चों के लिए ऐसा विद्यालय खोला है, इसकी कभी छुट्टी भी नहीं होती है, इसका टाइम भी चेंज नहीं होता। वो जो टीचर है बाबा हमारा सत टीचर जो है, एक मिनट भी लेट होता है, एक दिन का क्लास भी बाबा की तरफ से मिस होता है, बाबा की मुरली कभी मिस होती है, बाबा कभी छुट्टी लेते हैं, यानी टीचर भी कितना अनोखा है, पंचुअल, रेगुलर और अनोखा, और इतनी मेहनत। आप थोड़ा चिंतन करो, सोचो, सोचने के बाद भी बार बार आप इस बात को सोचो कि जितना बाबा ने बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में हमारे ऊपर जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतनी मेहनत संसार में किसी ने भी किसी के लिए की है? आप लोगों में भी कोई टीचर भी हैं, पिता भी हैं, लेकिन क्या आपने भी अपने किसी बच्चे के लिए, किसी चेले के लिए, टीचर के रूप में स्टूडेंट के लिए इतनी मेहनत की है, करते हैं? तो बाबा जो इतनी मेहनत कर रहे हैं किस लिए? कि हम बच्चे एकदम 100% सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम बिल्कुल बन जाएं, और उस बनने के लिए पढ़ाई के साथ साथ में जिनको हम कहते विपरीत परिस्थितियां, विघ्न, ये सब क्या है? ये विघ्न और विपरीत परिस्थितियां नहीं है, ये विघ्न और परिस्थितियां ये हमारी स्थिति को बनाने के लिए एक हमारे सहयोगी साधन है, ये लक्ष्य पर पहुंचने की सीढ़ियां हैं, मंजिल पर पहुंचने की ये लिफ्ट है। इस लिफ्ट को हम ये समझें कि ये लिफ्ट है, तो ये लिफ्ट हमारे लिए गिफ्ट बन जाएगी। पर कब? जब हमको ये याद रहेगा कि परिस्थिति नहीं, पेपर है। पेपर को क्या कहते? परीक्षा। परीक्षा यानी प्रभु इच्छा। प्रभु इच्छा क्या है? स्कूल में टीचर पेपर लेता है किस लिए? फेल करने के लिए नहीं, हम पूरे नंबर ले उसके लिए टीचर पेपर लेता है, क्योंकि पेपर में अगर हमने नंबर पूरे ले लिए तो हमको फौरन सर्टिफिकेट दे देगा, और नहीं तो हम कितने भी होशियार हों, टीचर सर्टिफिकेट दे सकता है बिना पेपर के? नहीं दे सकता। ठीक इसी प्रकार से हम बाबा के कितने लाडले, कितने सिक्की लधे, बाबा कैसी तुलनाएं करता है। कभी बाबा कहते बच्चे तुम मेरे सिर के ताज हो, नैनों के नूर हो, दिल के टुकड़े हो, कितने सारे बाबा हमारी महिमा करते हैं, कैसी कैसी हमारी तुलनाएं करते हैं, कितना हमको ऊंचा ले जाते हैं। तो बाबा हमारे लिए भी क्या कहते हैं कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, इसलिए हर बच्चे को कौन सा सर्टिफिकेट मिले? राजा का सर्टिफिकेट मिले, महाराजा का सर्टिफिकेट मिले। अब राजा और महाराजा का सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? जब हमारे सामने परीक्षाएं आएंगी, तो सबसे पहले हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझ आत्मा को अपनी स्थिति से, स्व स्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी है। पहले भी मैंने विजय प्राप्त की थी और मैं आत्मा ही विजय प्राप्त करूंगी। क्यों? क्योंकि बाबा ने अलौकिक जन्म में ही हमको जो गिफ्ट दी, उसमें बाबा ने हमको क्या कहा कि बच्चे सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मुझ आत्मा का सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए मैं आत्मा असफल हो ही नहीं सकती। तो मैं आत्मा असफल हो नहीं सकती, इसलिए सफलता तो मुझको ही मिलनी है, क्योंकि पहले भी सफलता मुझे मिली थी। ये दृढ़ता मेरे साथ में स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा भगवान मेरा जो साथी है वो कौन है? भाग्य विधाता। सारे विश्व की आत्माओं का जो भाग्य विधाता है वो मेरा साथी है, वो सर्वशक्तिवान है। तो वो साथी है इसलिए उसकी जो सारी शक्तियां हैं वो सर्वशक्तियां मेरे पास हैं, इसलिए मेरी हार हो ही नहीं सकती। तो पहला मेरे अंदर में ये दृढ़ विश्वास हो, ये दृढ़ता हो, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। तो जब हम दृढ़ता के संकल्प में रहेंगे तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी हमको क्या दिखेगी? जैसे बाबा कई बार मुरली में भी उदाहरण देते हैं कि बच्चे अगर आप पहाड़ी पे चढ़ जाओ और पहाड़ से अगर नीचे शेर को देखो तो शेर आपको कैसा दिखेगा? चैटी के समान। फिर आपको शेर से डर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो तो बहुत छोटा सा है, आप तो बहुत ऊंचाई पर हो। तो बाबा कहते इसी प्रकार से जब आप अपने श्रेष्ठ स्वयमान में रहेंगे, परमात्म स्मृति के स्वयमान में रहेंगे, तो दुनिया की ये जो परिस्थितियां हैं ये परिस्थितियां आपको सब कैसी लगेंगी? बहुत छोटी लगेंगी। और बहुत छोटी लगने के कारण से वो आपकी स्थिति के आगे ठहर ही नहीं पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कोई भी आपके सामने विघ्न आता है, विघ्न आने का कारण क्या है? विघ्न आता क्यों है? विघ्न आने का कारण है हमारी कोई ना कोई सूक्ष्म कमजोरी। अभी हम अपनी कोई ना कोई जो सूक्ष्म कमियां हैं, सूक्ष्म कमजोरियां हैं, सबसे बड़ी हमारी सूक्ष्म कमी कमजोरी क्या होती है? जो बाबा ने हमको दिनचर्या दी है, दिनचर्या हमारी शुरू कहां से होती है? अमृत वेले से। अगर हमारा अमृत वेला ठीक है, एक्यूरेट है, अमृत वेला अगर एक्यूरेट है तो हमारे सामने विघ्न आएगा पर वो टिकेगा नहीं, क्योंकि विघ्न ही हमारे लगन का आधार है। हमारा योग कब लगेगा? योग हम कब लगाएंगे? जब हमारे सामने कोई बात होगी, हमको बाबा से कुछ चाहिए होगा। कहते ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता व्यक्ति को कब पड़ती है? जब समय प्रति समय हमारे सामने पेपर आते रहे, कभी प्रकृति पेपर लेती रहे, कभी परिस्थितियां हमारा पेपर लेती रहे, चाहे वो हमारी शारीरिक परिस्थिति हो, चाहे वो हमारी सामाजिक परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थितियां अगर हमारा पेपर लेती रहेंगी तो हमारे अंदर में क्या होगा कि ज्ञान को और योग को प्रयोग करने का एक आधार बना रहेगा, एक हमारे अंदर में उमंग बना रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि विघ्नों को अगर हमको हटाना है, अपनी स्थिति को, स्व स्थिति जो है वो स्व स्थिति हमारी श्रेष्ठ रहे, तो श्रेष्ठ स्व स्थिति कब रहेगी? जब हम अमृत वेले से अपने आप को चेक करेंगे, अमृत वेले से अपने आप को चेक करेंगे कि सबसे पहले जो मेरी आंख खुली, तो आंख खुलते ही मेरी स्मृति कौन सी रही? आंख खुलते ही मेरा ध्यान घड़ी में गया कि कितने बजे हैं? अगर घड़ी में भी गया, इसका मतलब बाबा में तो नहीं गया। पहला संकल्प क्या होना चाहिए? बाबा। पहला संकल्प उठते ही बाबा। अगर हमारा ध्यान घड़ी में भी चला गया तो समझो हमारा बाबा से एक्यूरेट जो प्यार होना चाहिए वो बाबा से एक्यूरेट प्यार नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहते, सबसे पहले उठो, उठते से पहले संकल्प में बस प्यारा बाबा, मीठा बाबा, गुड मॉर्निंग। उठते से बाबा से सबसे पहले क्या करो? गुड मॉर्निंग। और एक मिनट बाबा को याद करने के बाद में फिर आप देखो घड़ी में कितने बजे और कितने नहीं बजे। अगर मान लीजिए चार नहीं भी बजे, दो बजे हैं, एक बजा है, आप दोबारा बाबा से गुड मॉर्निंग करके बाबा को एक मिनट याद करके दोबारा सो जाओ। लेकिन अभी आप उठे और आपको उठते से सबसे पहला संकल्प आया घड़ी में कितने बजे हैं, अभी आपने देखा चार बजे हैं, तो बाबा की पहली स्मृति तो नहीं रही ना। हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि मेरे मन के द्वारे कौन आया सवेरे सवेरे, जो बाबा का गीत है कि कौन आया सवेरे सवेरे। तो कौन आया सवेरे सवेरे यानी आंख खुलते ही इस स्मृति में कौन आया? कर्म आया, संबंध आया, साधन आया या बाबा आया? अगर हमको बाबा का अभ्यास होगा और बाबा आएगा तो कोई परिस्थिति भी आएगी ना, तो सबसे पहले बाबा आएगा, और नहीं तो क्या होगा कि कोई भी हमारे सामने विपरीत परिस्थिति आई तो पहले पहले हमारा ध्यान व्यक्ति पर जाएगा कि इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है। बीमारी होगी तो डॉक्टर याद आएगा, कोई बात होगी तो व्यक्ति याद आएगा, वैसी कोई बात होगी तो साधन याद आ जाएगा, तो बाबा तो याद नहीं आया। लेकिन पहले संकल्प में बाबा आए, फिर हमको जिस भी चीज की जरूरत होगी, व्यक्ति की जरूरत होगी तो बाबा क्या करेगा? बाबा व्यक्ति को सामने ला देगा। साधन की जरूरत होगी तो साधन को सामने ला देगा, और किसी फिजिकल चीज की जरूरत होगी तो उस चीज को सामने ला देगा। लेकिन हमको जो सहयोग देने वाला है, हमको जो साथ देने वाला है, वो संसार में बाबा के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्योंकि आप देखो हर आत्मा को द्वापर युग से संबंधों का और साधनों का अनुभव है, और जब एक दूसरे से बात होती है तो सब क्या कहते हैं? कहते हैं, नहीं नहीं, हम तुम्हारा तो अंतिम श्वास तक सहयोग देंगे, हम तो ऐसा अंतिम श्वास तक करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल देखने में क्या आता है? संसार में किसी ने भी किसी का जीवन भर साथ दिया है? नहीं दिया है। और कहा भी क्या है? झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। जब ज्ञान नहीं था तब भी भक्त गा रहे थे और गाने के बाद भी झूठों का ही बजा रहे थे। उसने मेरे लिए ये किया, वो मेरे लिए ऐसा करेगा, तो गा तो भक्ति में भी रहे थे, बाबा के बन गए। बाबा का बन गए तब भी हम सब क्या कह रहे हैं, बस मेरा एक बाबा दूसरा कोई नहीं। क्योंकि अगर बाबा को याद करो, अरे बाबा के तो हम हैं ही, हम बाबा को याद ही करते, और किसको याद करेंगे। अभी है ही कौन हमारा संसार में। कितने हम सहज भाव से इस बात को कह देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम अपने अंदर इस बात का चिंतन करें, मनन करें कि सचमुच मेरा एक बाबा है, या अभी भी मेरी बुद्धि एक के अलावा कहीं कहीं जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो विघ्न आते हैं, चाहे ये विघ्न संबंधों से आए, चाहे वो संबंध हमारे लौकिक हों, चाहे वो संबंध हमारे अलौकिक हों, चाहे कोई परिस्थितियां हों, ये सब किस लिए आते हैं? हमारी स्थिति को नष्टो मोहा बनाने के लिए। हम नष्टो मोहा कब बनेंगे? आपने देखा होगा कि जब माताएं आपस में मिलती हैं और आपस में जब माताएं बात करती हैं और उनके घर के परिवार के लोग सब बहुत अच्छे होते हैं, तो जब आपस में मिलेंगी तो क्या कहेंगी? या तो अपनी बहू की महिमा करेंगी, या बेटों की करेंगी, नाती पोतों की करेंगी। लेकिन जिसके घर में झगड़ते होंगे, उनको परेशान करते होंगे, वो क्या करती हैं फिर? वो बाबा को याद करती हैं। उनकी बुद्धि किससे जुड़ती है? यानी उनका समय और शक्ति सफल हुई या नेगेटिव में गई? हैं? अगर मान लीजिए अपने साथ में एकदम सबका बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा रहे, कोई परिस्थिति नहीं आए, कोई विघ्न नहीं आए, सबसे बहुत अच्छे एकदम आपकी सबको महिमा कर रहे हो, तो आप फिर किसको याद करेंगे? बाबा को याद करेंगे या उस व्यक्ति को याद करेंगे? बाबा को याद तो नहीं करेंगे। क्यों? गायन क्या है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सतयुग में सब चीज बढ़िया ही बढ़िया थी, तन भी बढ़िया, मन भी बढ़िया, धन भी बढ़िया, संबंध भी बढ़िया, प्रकृति भी बढ़िया, वैभव व्यंजन भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया था। तो बढ़िया बढ़िया था तो याद नहीं किया ना? अभी क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि सब चीजें क्या है, हमारे से विपरीत है। तो हमारे से विपरीत है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अभ्यास करते हैं, श्वास और श्वास बस बाबा की याद रहे, एक संकल्प भी बाबा के बिना ना जाए। तो एक संकल्प भी बाबा के बिना ना जाए तो नेगेटिव परिस्थिति जो है, विपरीत जो परिस्थिति है, वो आपकी सहयोगी बनी कि असहयोगी बनी? बाबा की याद में मददगार कौन बना? विपरीत परिस्थितियां। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं, कुंती से जब भगवान ने पूछा, भगवान तुम्हें क्या, कुंती से पूछा भाई तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप कोई ना कोई ऐसा दुख, ऐसी ना कोई परिस्थिति देते रहना जिससे मैं क्या करूं, आपको याद करती रहूं। क्योंकि अगर कोई भी मेरे सामने समस्या नहीं रहेगी तो ऐसा ना हो कि मैं आप ही को भूल जाऊं। तो यहाँ पर भी बाबा भी हम बच्चों को जो कह रहे हैं कि बच्चे बस मेरे को याद करो, मीठा बाबा प्यारा बाबा, मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा है तो बस बाबा, मेरा है तो बाबा। तो उस मीठे बाबा का मीठा अनुभव आपको कैसे होगा, कैसे होगा, जब आपको संसार में व्यक्ति से, परिस्थिति से कुछ ना कुछ थोड़ा सा दर्द मिलेगा, थोड़ा सा, और उस दर्द को आप बाबा की याद से, बाबा के प्यार से, वो आपको दर्द का जब दर्द अनुभव नहीं होगा, तब आपके मुख से क्या निकलेगा, मेरा बाबा कितना प्यारा है, मेरा बाबा कितना मीठा है, है? तो जैसे ही आपने मीठा बाबा कहा और वो परिस्थिति एकदम आपके सामने क्या हो जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगी ना, और चेंज हो जाएगी फिर आप किसके गुण गाएंगे, बाबा के। तो अनुभव करने के लिए अगर रात ना हो तो दिन का अनुभव होगा, होगा है? अगर हमको दुख नहीं मिला होता तो बाबा ने आके जो सुख दिया उस सुख का अनुभव होता, नहीं होता ना। तो इसलिए सबसे पहले हमारे अंदर में दृढ़ता हो, और दृढ़ता के साथ साथ में ये हमको स्मृति हो कि मेरा भगवान साथी है, इसलिए मैं आत्मा सर्व समर्थ हूँ। ये गायन क्या है, जिसका साथी है भगवान तो क्या करेंगे दुनिया के आंधी और तूफान। तो दुनिया के आंधी तूफान क्या है, स्थूल आंधी तूफान नहीं, बड़ी से बड़ी परिस्थिति। तो ये परिस्थितियां ही हमें नष्टो मोहा बनाएंगी, ठोकर ही ठाकुर बनाएंगे, ठोकर ही ठाकुर बनाएंगे। पानी के अंदर, पानी की जो लहरें होती हैं, शालिग्राम और शिवलिंग कैसे तैयार होता है, है? समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर, है? बार बार जब जो लहरों से पत्थर टकराते हैं, तो पत्थर के पत्थर जब टकराते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे पत्थर क्या बन जाता है, शालिग्राम बन जाता है। तो लहरें अच्छी रही ना, ठीक इसी प्रकार से हम सबको बाबा क्या बनाने आया है, क्या बनाने आया है, ठाकुर। शालिग्राम आत्मा तो हम है ही, ठाकुर यानी श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण। ऐसी दुनिया में बाबा हमको ले जाने के लिए आया है, ऐसा बनाने के लिए बाबा आया है। तो हम ऐसा कैसे बनेंगे, इसके लिए क्या करो, रोज परिस्थितियों का वेलकम करो। होशियार विद्यार्थी क्या करता है, टीचर से कहेगा आप तो ऐसा किया करो, रोज पढ़ाओ और रोज मेरा टेस्ट लो। होशियार विद्यार्थी कहेगा आप मेरे को डेली पढ़ाते हो, रोज पढ़ाओ और रोज मेरा टेस्ट लेते रहो। और कमजोर विद्यार्थी क्या कहेगा कि आप पढ़ा तो रहे हो, ले लेना बाद में, कभी भी ले लेना, अभी तो आप पढ़ा रहे हो ना, पढ़ाओ। तो हम बाबा के कैसे बच्चे हैं सर, होशियार हैं, समझदार हैं, हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचना ही है। तो जो बाबा हमको सत शिक्षक बन करके हमको पढ़ाने के लिए आया है, तो हम भी बाबा से क्या कहें, बाबा आप रोज हमारा पेपर लो। आपको जैसे पेपर लेना है वैसे आप पेपर लो, और हम हर पेपर में पास होकर दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, कि पहले भी हम पास हुए थे और हम आपके स्टूडेंट हैं, हम किसी साधारण मनुष्य के स्टूडेंट नहीं हैं, हम किसी मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम आपके भगवान के, भाग्य विधाता के हम बच्चे हैं, गॉड फादरली हम स्टूडेंट हैं, इसलिए हम पास हो करके दिखाएंगे। अभी आप क्या करो, आप हमारा रोज पेपर लो, और रोज पेपर लो इसलिए हर समय अपने आप को ये महसूस करो कि मैं आत्मा परीक्षा हॉल में 24 घंटे रहती हूँ, 24 घंटे सोते उठते बैठते जागते हर कर्म करते हुए मैं आत्मा परीक्षा हॉल में ही हूँ। हर समय मेरे को एग्जामिनर चेक कर रहा है, देख रहा है, पेपर हर समय मेरा ले रहा है, हर समय मुझको नंबर मिल रहे हैं, हर एक में मुझे पास होना है। तो ये स्मृति हमको क्या करेगी? ये स्मृति हमको अलर्ट बनाएगी, हम हर समय एक्टिव रहेंगे, कभी भी हमारे अंदर अलवेलापन और आलस नहीं आ सकता। कभी भी हम ये नहीं सोच सकते अच्छा ठीक है इसको हम कल देख लेंगे, इसको हम बाद में देख लेंगे, नहीं, हर समय एकदम अलर्ट। जिसमें बाबा कई बार हमको उदाहरण देते हैं कि बच्चे जो योद्धा होते हैं ना, तो वो योद्धा क्या करते हैं, सोते भी हैं तो अपने सब हथियार आदि सब अपने साथ रखते हैं तब वो सोते हैं, कभी भी किस क्षण भी दुश्मन का वार ना हो जाए। तो जो इतने अलर्ट होकर के सोते हैं तो वो सोते में भी क्या रहते हैं, जागते हैं। जो बाबा ने कहा ना कि आप इतने अलर्ट होकर के ऐसी स्मृति में जब आप सोएंगे तो वो नींद भी आपके कौन से खाते में चली जाएगी, योग के खाते में चली जाएगी। आपको कौन सा टाइटल मिल जाएगा, निंद्राजीत का टाइटल मिल जाएगा। तो निंद्राजीत का टाइटल मिल जाएगा, योगी का टाइटल मिल जाएगा, योग के नंबर मिल जाएंगे, स्मृति हमारी श्रेष्ठ होती जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी जो स्वस्थिति है वो स्वस्थिति ऊंची होती जाएगी और परिस्थिति कैसी बनती जाएंगी, परिस्थितियां हमारी नीची बनती जाएंगी। हमको परिस्थिति महसूस ही नहीं होगी, खेल महसूस होगी। आपको कोई याद भी दिलाएगा ना, कह रहे तुम्हारे सामने फलानी परिस्थिति आ रही है या फलानी बात ऐसी है, आपको लगा रही है ये क्या है, ये तो सब कागज का शेर है। तो परिस्थिति शेर के बजाय कागज का शेर दिखाई देगी। और स्वस्थिति अगर हमारी कमजोर होगी तो कागज का शेर भी सवा शेर नजर आएगा। इसलिए देवियों की सवारी काय पे दिखाई है, शेर पर। और शेर अर्थात प्रकृति जीत। तो हम सब क्या है, प्रकृति जीत है ना, तो प्रकृति जीत परिस्थिति जीत, और दोनों को जीतने का साधन है स्वस्थिति। स्वस्थिति के लिए स्वयं के जो स्वयमान हैं, रोज उन स्वयमानों को अपने सामने एक डेली रखो और उस स्वयमान का डेली सारे दिन उसका चिंतन चलता रहे, कर्म करते हुए बोलते हुए हर उसमें हमारा बराबर चिंतन चलता रहे। तो स्वयमान क्या करेगा, हमको नीचे नहीं आने देगा, ताकि स्वयं के मान से सब चीजें पीछे चली जाएंगी और मैं आत्मा ऊंचाई पर। तो इन स्मृतियों के द्वारा तूफान को तूफान ना समझ के तोहफे समझें, विघ्न को लगन का साधन समझें, ठोकरों को ठाकुर बनने का आधार समझें, परिस्थितियों को नष्टो मोहा बनने का एक निशान समझें, परीक्षाओं को अपने आप को चेक करने का, ताकि कोई भी परीक्षा होगी तो फौरन आप चेक कर लेंगे अपने आप को कि ये गुण ये शक्ति मेरे अंदर कितने परसेंट आई है, आप फौरन अपना परसेंटेज निकाल लेंगे कि मेरे अंदर सहन शक्ति कितनी आ गई, नम्रता कितनी आ गई, हर्षित मुक्ता कितनी आ गई है, शक्तियां, समाने की शक्ति कितनी आ गई, सामना करने की परिस्थिति मेरे अंदर शक्ति कितनी आ गई। तो ये जो चीजें हैं दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, इन शक्तियों का भी हम क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। और चेक कर लेंगे तो अपने आप को चेंज करने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। दुनिया में बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं, तो उन एग्जाम को चेक करने के लिए, कॉपी के लिए जो एग्जामिनर स्पेशल होते हैं, तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, जो स्टूडेंट को टीचर पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ाने वाले विशेष होते हैं और उनको अपन धन देते हैं, पेमेंट देते हैं कि तुम हमारी छोटी से छोटी कमी को निकालो, लेकिन हमको एग्जाम में फेल मत होने देना। तो उसके लिए हम उनको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। और यहाँ पे हमारी छोटी से छोटी कमियां निकल जाए, इसलिए फ्री के एग्जामिनर मिल जाते हैं। कभी प्रकृति एग्जामिनर बन जाती है, कभी व्यक्ति एग्जामिनर बन जाते हैं, कभी हमारे साथी हमारे एग्जामिनर बन जाते हैं, तो सब फ्री में बन जाते हैं ना? हैं? दुनिया में धन दे करके कहते हैं हमारी गलतियों को चेक करके बताओ क्या कमी है। और यहाँ पे संपन्न बनाने के लिए इसलिए क्या कहा गया है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ऐसी गायन है ना? तो विपरीत परिस्थितियों को विपरीत नहीं समझो, प्रीत बनने का आधार जो है, बाबा से प्रीत कितनी परसेंट है, इसकी जो तराजू है, ये हमको समझने का जो साधन है, ये विपरीत परिस्थितियां हैं, इसलिए इनको विपरीत परिस्थिति ना समझ करके प्रीत के साधन समझो। जब हम साधन समझेंगे तो हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ बनी रहेगी और परिस्थितियां हल्की हो जाएंगी और हम आत्मा माया जी प्रकृति जी जगत जी का
में अब तुम्हें आना।